ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 राज्यों के 5 दिन के दौरे पर जाएंगी। वे 1 मार्च तक बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की यात्रा पर रहेंगी। पहले दिन आज बिहार के पटना में राष्ट्रपति पटना मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी। कल राष्ट्रपति मध्य प्रदेश में छतरपुर के गढ़ा में बागेश्वर जनसेवा समिति की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेंगी। कल ही वे गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और केवड़िया में नर्मदा आरती में शामिल होंगे। 27 फरवरी को राष्ट्रपति केवड़िया में एकता कौशल विकास केंद्र का दौरा करेंगी और अहमदाबाद में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। उसके अगले दिन वे गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन राष्ट्रपति भुज में स्मृति वन भूकंप स्मारक भी जाएंगी। 1 मार्च को राष्ट्रपति का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल धौलावीरा जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में आज सुबह द्वितीय एडवांटेज असम निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में उद्घाटन सत्र, 7 मंत्री स्तरीय सत्र और 14 विषयगत सत्र होंगे। ये राज्य के औद्योगिक विकास, वैश्विक व्यापार भागीदारी और असम के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र पर केंद्रित होगा। इसमें 240 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। प्रधानमंत्री राज्य का 2 दिनों का दौरा संपन्न कर आज दोपहर नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के भागलपुर में देशभर के 9,80,00,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने योजना के अंतर्गत 22,700 करोड़ रुपए की राशि जारी की। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए दलहन और तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इससे पहले भोपाल में कल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों, अर्थशास्त्रियों, संस्थाओं और कई देशों को भारत से उम्मीदें हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव सक्रिय भूमिका निभाई है। डॉक्टर जयशंकर ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण अपने भागीदारों की प्राथमिकता के अनुरूप क्षमता निर्माण और मानव संसाधनों तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने में दृढ़ और समझौता न करने वाला देश है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को उनकी आजीविका और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सहायता करना है। मेले का ये 5वां संस्करण है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष मेले का विषय है परंपरा, कला और संस्कृति। ये मेला 10 मार्च तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में अप्रैल मई में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। ये चुनाव 7 साल के अंतराल के बाद कराए जाएंगे। अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से कुछ महीने पहले पंचायत चुनाव कराए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 फरवरी 2025 से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपए तक जमा धन निकालने की अनुमति दे दी है। रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद ये निर्णय लिया है। ये छूट मिलने के बाद बैंक के 50% से अधिक जमाकर्ता अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे, जबकि बाकी जमाकर्ता अपने खातों से 25,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार और अधिक बंधकों की रिहाई के बदले में हमास के साथ युद्ध विराम समझौता आगे बढ़ाने को तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंधकों की रिहाई के बिना अस्थायी युद्ध विराम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में ग्रुप ए के मैच में कल रात रावलपिंडी में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जबकि भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।